ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
पंचतंत्र।
नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियाँ। इस कहानी का नाम है मूर्ख बंदर। एक नगर के पास किसी वैश्य के पुत्र ने पेड़ों की झुरमुट में मंदिर बनाना शुरू किया। उसमें जो कर्मचारी शिल्पी आदि थे वे दोपहर के समय भोजन करने के लिए नगर में चले जाते थे। एक दिन बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहां आया। वहां किसी कारीगर का आधा चीरा हुआ किसी पेड़ की लकड़ी का स्तंभ बीच में खैर की खूंटी ठोंक कर खड़ा किया हुआ था। इसी समय वे बंदर पेड़ों के ऊपर तथा लकड़ी के चारों ओर खेलने लगे। उनमें से एक बंदर चंचलता के कारण उस आधे चीरे हुए स्तंभ पर बैठ गया और हाथ से उस खूंटी को पकड़कर उखाड़ने लगा। कील उखड़ते ही उस स्तंभ के छेद में लटके हुए उसके अंडकोश दब गए, जिससे वो मर गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिना काम का काम नहीं करना चाहिए। हम दोनों के खाने से बचा हुआ भोजन रखा ही है, फिर इस बेकार के व्यापार से क्या काम? दमनक ने कहा, तो क्या आप केवल भोजन की ही इच्छा रखते हैं? ये ठीक नहीं है। कहा भी है कि मित्रों का उपकार और शत्रुओं का अपकार करने के लिए ही बुद्धिमान लोग राजा का आश्रय लेते हैं। वैसे अपना पेट कौन नहीं पाल लेता? क्योंकि जिसके जीवित रहने से बहुत सारे मनुष्य जीवित रहें, वही जीवित रहता है। वैसे क्या पक्षी चोंच से अपना पेट नहीं भर लेते? तथा मनुष्यों में क्षण भर भी प्रतिष्ठित बनकर विज्ञान, वीरता तथा ऐश्वर्य के गुणों सहित जीवन को ही जीवन का रहस्य जानने वाले लोग जीवन कहते हैं, जो न अपने पर, न दूसरों पर, न दीनों पर और न मनुष्यों पर दया करता है। मनुष्य लोक में उसके जीवित रहने का लाभ ही क्या है? वैसे तो कौवा भी लंबे समय तक जिंदा रहता है और बलि खाता है। जिस प्रकार छोटी नदी और चूहे की अंजलि जल्दी भर जाती है, उसी प्रकार कायर पुरुष कम वस्तु से ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। और फिर माता का यौवन हरने वाले उस पुरुष के जन्म से क्या लाभ, जो अपने वंश में ध्वजा झंडे के अग्रभाग की तरह नहीं फहराता। परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और कौन पैदा नहीं होता? वास्तव में वही जन्म लेने वाला गिना जाता है जो अधिक से अधिक धन से चमकता दमकता हुआ हो। नदी के किनारे उत्पन्न उस घास के तिनके का जन्म भी सफल है, जो जल में डूबते समय घबराए हुए मनुष्य का सहारा बनता है। और फिर ऊंचे नीचे घूमने वाले तथा लोगों के कष्ट दूर करने वाले बादल की तरह उपकारी सज्जन तो बहुत कम ही होते हैं। विद्वान लोग ऐसी माता को विशेष महत्व देते हैं, जो अपने गर्भ में बड़ों के भी गुरु स्वरूप पुरुष को धारण करती है। अपनी शक्ति न प्रकट करने वाला समर्थ पुरुष भी तिरस्कृत हो जाता है। लकड़ी के अंदर रहने वाली आग का हर कोई उल्लंघन करता है, परंतु जलती हुई आग का उल्लंघन कोई नहीं करता। करकट बोला, हम तो यहाँ अप्रधान हैं, तब हमें इस बात से क्या मतलब? कहा भी है, बिना पूछे जो अप्रधान तथा कुबुद्धि प्राणी राजा के सामने बोलता है, वो केवल अपमान को ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसका तिरस्कार भी होता है। कोई बात वही कहनी चाहिए जहाँ कहने से कुछ लाभ हो, जैसे कि सफेद कपड़े पर रंग बहुत स्थायी होता है। दमनक बोला, नहीं ऐसा मत कहो, यदि राजा की सेवा करता है तो अप्रधान सेवक भी प्रधान हो जाता है। सेवा से विपरीत प्रधान सेवक भी अप्रधान हो जाता है, क्योंकि कहा भी है, राजा अपने पास रहने वाले मनुष्य को ही मानता है, फिर चाहे वो विद्याहीन, अकुलीन या संस्कारहीन ही क्यों न हो। प्रायः राजा, स्त्री और लताएं जो पास में होता है उसी से लिपटती हैं। और भी जो सेवक स्वामी के क्रोध और प्रसन्नता के उपाय खोजते रहते हैं, वे धीरे धीरे विरक्त राजा को भी अपना बना लेते हैं। महत्वाकांक्षी विद्वान, कारीगर, वीर और सेवा के तत्व को जानने वाले लोगों को राजा के अलावा अन्य आश्रय नहीं रहता। जो अपनी जाति आदि के अभिमान वश राजा के पास नहीं जाते, उनके लिए मरने के बाद भीख मांगना ही प्रायश्चित कहा गया है। जो दुरात्मा कहते हैं कि राजा दुराध्य यानी के पूजा के योग्य नहीं होते हैं, वे अपना प्रमाद यानी कि नशा, आलस और जड़ता ही प्रकट करते हैं। जब सांप, ब्याज, हाथी और सिंहों को भी उपाय से वशीभूत होते देखा जाता है, तो अप्रसादी और बुद्धिमान मनुष्यों के लिए राजा को वश में करना कौन सी बड़ी बात है? राजा के ही आश्रय से विद्वान उन्नति करता है, क्योंकि मलयाचल के अलावा दूसरी किसी जगह चंदन के पेड़ नहीं उगते। सफेद छत्र, मनोहर घोड़े और मस्त हाथी, ये सब वस्तुएं हमेशा राजा की प्रसन्नता से ही प्राप्त होती हैं। कर्टक बोला, तो आप क्या करना चाहते हैं? वो बोला, आज हमारा स्वामी पिंगलक और उसका परिवार डरा हुआ है, इसलिए उसके पास जाकर डर का कारण जानकर संधि का अर्थ है मेल, विग्रह यानी कि युद्ध, यान मतलब शत्रु पर चढ़ाई, आसन समय का देखना, संश्रय बलवान से सामना होने के कारण सबल का आश्रय, इन नीतियों में से किसी एक का आश्रय यानी कि सहारा लूंगा। कर्टक बोला, आपको कैसे पता कि स्वामी डरा हुआ है? वो बोला, इसे जानने में क्या है, कहा भी है कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी समझ लेते हैं और हाथी घोड़े प्रेरणा पाकर भार वहन करते हैं, क्योंकि बुद्धि दूसरे की कोशिश का ज्ञान रूपी फल देती है। भगवान मनु ने भी कहा है, विषाद या प्रसन्नता को प्राप्त आकार, संकेत, गमन, क्रिया, भाषण, आंखें और मुंह के विकार से मन की बात जान ली जाती है। इसीलिए मैं डर से व्याकुल स्वामी के पास जाऊंगा और अपनी बुद्धि से उनका डर दूर करके उनको अपने वश में कर लूंगा और मंत्री बनूंगा। कर्टक बोला, आप सेवा धर्म नहीं जानते हैं, फिर किस प्रकार उसे अपने वश में करेंगे? वो बोला, मैं सेवा धर्म कैसे नहीं जानता? पिता की गोद में खेलते समय सामने आए हुए साधुओं के मुंह से मैंने जो नीति शास्त्र सुना है वो सेवा धर्म का सार दिल में रख लिया है, उसे सुनो। पराक्रमी, विद्वान और सेवा वृत्ति के जानकार लोग सुनहरे फूलों वाली पृथ्वी खोज करके उसे प्राप्त कर लेते हैं। वही सेवा सेवा है जो प्रभु का हित करे, वो प्रभु की बातों से पकड़ी जाती है। विद्वान पुरुष को उसी वाक्य के द्वार से राजा का आश्रय लेना चाहिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो जिसके गुण नहीं जानता हो उस विद्वान को उस स्वामी की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे कुछ फल नहीं मिलता। जैसे बंजर जमीन को जोतने से कोई लाभ नहीं होता, धन और प्रकृति से हीन पुरुष भी यदि सेवा के गुणों से युक्त हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसी जीवन या कालांतर, कालांतर मतलब बाद में, फल की प्राप्ति हो सकती है। ऊंट के समान स्थिर और भूख से सूखते हुए चुप बैठे रहना अच्छा है, परंतु चतुर पुरुष को ज्ञान शून्य प्रभु से सहायता प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। सेवक अपने कृपण, कृपण मतलब कंजूस, सेवक अपने कृपण स्वामी की कठोर शब्दों में निंदा करता है, परंतु वो सेवक जो सेवा के योग्य और सेवा के अयोग्य स्वामी को नहीं पहचानता अपनी निंदा क्यों नहीं करता? जिसकी सेवा करके भूख से व्याकुल सेवक को आराम प्राप्त नहीं होता वो राजा हमेशा फल फूल से मदार के पेड़ के समान त्यागने योग्य है। सेवक को राजमाता, पटरानी, राजकुमार, मुख्यमंत्री, पुरोहित और द्वारपाल से राजा के समान ही व्यवहार करना चाहिए। करने वाले या नहीं करने वाले काम को जानने वाला जो सेवक पुकारने पर जी ऐसे कहता है और बिना सोचे आज्ञा का पालन करता है वही राजा का प्रिय होता है। जो प्रभु की प्रसन्नता से प्राप्त वस्तुओं से संतोष प्रकट करता है और उनके वस्त्र आदि अपने अंग में धारण करता है वही राजा का प्रिय होता है। जो सेवक अंतःपुर में रहने वालों यानी कि रानियां वगैरह उनके साथ सलाह नहीं करता और ना ही रानियों से बात करता है वही राजा का प्रिय होता है। जो जुए को यमदूत के समान, शराब को जहर के समान और स्त्रियों को घिनौनी आकार वाली देखता है वही राजा का प्रिय होता है। जो युद्ध के समय में आगे चले, नगर में पीछे पीछे चले और महल में द्वार पर खड़ा रहे वही सेवक राजा का प्रिय होता है। मैं हमेशा प्रभु का प्रेम मात्र हूँ ऐसा सोचकर जो कठिनाई में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता वही राजा का प्रिय होता है। जो राजा के दुश्मनों का हमेशा अनिष्ट चाहता है और राजा के प्रियजनों से प्रेम करता है वही राजा का प्रिय होता है। जो प्रभु के कहने पर उल्टा उत्तर नहीं देता और पास में बहुत जोर से नहीं हंसता वही राजा का प्रिय होता है। जो बिना डरे युद्ध भूमि को घर समझता और परदेश को अपने नगर के समान मानता है वही राजा का प्रिय होता है। जो रानियों की संगति नहीं करता तथा उनकी निंदा और उनके साथ विवाद नहीं करता वही राजा का प्रिय होता है। कर्टक बोला, तो तुम वहां जाकर पहले क्या कहोगे ये तो बताओ। वो बोला, बात करते समय वाक्य अपने आप एक के बाद एक आते जाते हैं, जैसे अच्छी बारिश के गुण से बीज उत्पन्न होता जाता है। गलती से प्राप्त होने वाली मुसीबत और उपाय करने से प्राप्त सफलता को बुद्धिमान मनुष्य नीति के गुण से काम में लाकर प्रत्यक्ष देखते हुए के समान वर्णन करते हैं। कुछ लोगों की बातें तोते के समान मीठी होती हैं, किंतु उनके मन में कपट भरा रहता है। कुछ लोगों के हृदय मूकवत होते हैं अर्थात उनकी बातें सुनने में कठोर होती हैं, किंतु हृदय में कपट नहीं होता है। दूसरे पुरुषों के हृदय और बातें दोनों ही सारता को प्रकट करते हैं। सारता मतलब तत्व। मैं असमय की बात नहीं बोलूंगा। पिता की गोद में खेलते समय ही मैंने सुना था, बृहस्पति भी यदि असमय में कोई बात कहे तो बहुत उपेक्षा और अपमान को प्राप्त हो सकते हैं। कर्कट बोला, जैसे कि पर्वत, सांप आदि हिंसक जीवों से युक्त और भयानक एवं नीचे ऊंचे रास्तों के कारण कठिन होते हैं, इसी प्रकार राजा जो दुष्ट से सेवा कराते हैं वे भी हमेशा अपूजनीय होते हैं। और भी सुख के भोग में लगे हुए, अगर सांप के विषय में बोले तो फन वाले, सुख के भोग में लगे हुए वस्त्रधारी कुटिल निष्ठुर कोशिश वाले दुष्ट राजा सांप की तरह मंत्र अर्थात मन के अनुकूल वृत्ति से ही साधे जाते हैं। वस्त्रधारी मतलब केंचुलीधारी, कुटिल टेढ़ी गति वाले, दो जीव वाले, क्षण क्षण में बात बदलने वाले, क्रूर काम करने वाले, अनिष्ट और दोष देखने वाले राजा सांपों की तरह दूर से ही देखते हैं। जो राजा के प्रिय पुरुष का थोड़ा भी अनिष्ट करते हैं वे पापी आग में पतंग के समान जलकर मर जाते हैं। सब लोगों से नमस्कार पाने योग्य राजाओं का पद कठिनाई से प्राप्त होता है, क्योंकि उनके थोड़े से भी अपकार से ब्राह्मणत्व के समान सब कुछ दूषित हो जाता है। राज लक्ष्मी बहुत मुश्किल से प्राप्त हो सकती है, इसी कारण वो दुर्लभ और कठिनाई से जमा होती है। किंतु बर्तन में भरे जल के समान कोशिश से रक्षित लक्ष्मी लंबे समय तक अपने पास रहती है। दमनक बोला, ये सच है, किंतु जिसका जिसका जो जो भाव है उस भाव से उसकी सेवा करता हुआ बुद्धिमान उसमें प्रवेश करके शीघ्र ही उसे अपने वश में कर लेता है। स्वामी के मन के अनुसार चलना सेवकों का सदाचार माना जाता है। लगातार उनके आशय के अनुसार चलने वाले मनुष्य राक्षसों को भी अपने वश में कर लेते हैं। राजा के क्रोध में प्रशंसा की बात, उनके प्रिय से प्रेम, उनके द्वेष वाले से द्वेष और उनके दान की प्रशंसा, ये बिना मंत्र के वशीकरण तंत्र हैं। कर्टक बोला, यदि ऐसा विचार है तो प्रस्थान करें, आपका रास्ता मंगलकारी हो, आप जाकर इच्छा के अनुसार काम करें। वो भी कर्कट को प्रणाम करके पिंगलक के पास जाने के लिए चल दिया। आते हुए दमनक को देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, दंड हटा लो, ये हमारा पुराना मंत्री पुत्र बेरोक टोक प्रवेश पाने का अधिकारी है, उसे आने दो, ये दूसरे आसन का अधिकारी है। द्वारपाल बोला, आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके दिए हुए आसन पर बैठ गया। पिंगलक अपने दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखकर सम्मान से बोला, आप अच्छे तो हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं। दमनक बोला, श्रीमान के श्री चरणों को हालांकि हमसे कुछ मतलब नहीं है, परंतु समय पर आपसे कुछ कहना उचित ही है, क्योंकि राजाओं को उत्तम, मध्यम और अधम सभी से काम पड़ता है। कहा भी है, दांतों को कुरेदने या कानों को खुजलाने के लिए घास से भी राजाओं को काम पड़ता है। फिर विविध अंगों, आवाज और हाथ पैर वाले मनुष्य का काम पड़े तो क्या आश्चर्य है। इसीलिए हम आपके चरणों में कुलक्रम, कुलक्रम यानी पीढ़ियां, पीढ़ियों से रहने वाले और मुसीबत में भी पीछे चलने वाले सेवक हैं। हालांकि आज हमें अपना अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए श्रीमान के लिए ये उचित नहीं है। कहा भी है, सेवक और गहने उचित स्थान में ही नियुक्त होने चाहिए। मैं इनका प्रभु हूँ, ऐसा मानकर सिर के आभूषण को पाँव में कोई नहीं पहनता, क्योंकि जो गुणों से अनजान होता है सेवक उसका साथ नहीं देते, चाहे वो धनवान, कुलीन और क्रमागत राजा ही क्यों ना हो। क्रमागत मतलब खानदानी। कहा है कि जो सेवक असमान सेवकों के समान पद पर बैठाया जाए, उसे बराबरी के सेवकों से दूर रखा जाए तथा काम में नहीं लगाया जाए, इन तीन कारणों से सेवक राजा को त्याग देता है। और अगर राजा अज्ञानता से उत्तम पद के योग्य सेवकों को अधम स्थानों पर नियुक्त करता है तो वे वहां नहीं रहते। इसमें न राजा का दोष है और न ही उनका। कहा भी है, सोने के गहने में जड़ा जाने योग्य मणि यदि पीतल में जड़ दिया जाए तो वो मणि न रोता है न सुंदर दिखता है, किंतु जड़ने वाले की ही निंदा होती है। जो स्वामी ये कहते हैं कि बहुत समय बाद दिखे, वो भी सुने, जहां दाहिने बाएं हाथ में विशेषता नहीं देखी जाती, वहां कौन बुद्धिमान क्षण भर भी रह सकता है। जिनकी बुद्धि कांच में मणि और मणि में कांच की कल्पना करती है, उनके पास सेवक बिल्कुल भी नहीं टिकते। जिस देश में परीक्षा करने वाले नहीं हैं, वहां समुद्र से उत्पन्न रत्नों का कोई मूल्य नहीं होता। अभीर देश में चंद्रकांत मणि को वहां के ग्वाले 3 कौड़ी में खरीदते हैं। लाल और पद्मराग मणि का अंतर जानने वाला जहाँ कोई नहीं है, वहां रत्नों को कैसे बेचा जा सकता है? जब स्वामी सेवकों के साथ विशेषता रहित एक समान व्यवहार करता है तो मेहनती सेवकों का उत्साह ही खत्म हो जाता है। न सेवकों के बिना राजा और न राजा के बिना सेवक ही रह सकते हैं। उनका यह व्यवहार एक दूसरे पर निर्भर होता है। सेवकों के बिना राजा वैसे ही शोभित नहीं होता जैसे धरती पर कृपा करने वाले किरणों के बिना तेजस्वी सूर्य भी शोभा नहीं देता है, जैसे अरों में नाभि और नाभि में अरे स्थित है। ठीक इसी प्रकार स्वामी सेवक का आजीविका चक्र चलता है। हमेशा सिर पर धारण किए और स्नेह से पाले हुए बाल भी तेल के बिना रूखे हो जाते हैं, तो क्या सेवक रूखे नहीं होंगे? प्रसन्न होकर राजा सेवकों को केवल धन देता है, किंतु सेवक सम्मान भर से उसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ये विचार करके राजाओं को ऐसे चतुर सेवक नियुक्त करने चाहिए जो कुलीन, वीर, समर्थ, भक्त और कुल परंपरा से नियुक्त रहते आए हों। जो सेवक राजा का कोई कठिन तथा हितकारी काम करके भी शर्म से कुछ नहीं कहते, ऐसे ही सेवकों से राजा को सहायता मिलती है। जिस सेवक पर मन में बिना डरे काम का बोझ डालकर राजा निश्चिंत होता है, वही सेवक सेवक है। अन्य सेवक पत्नी की तरह राजा के पास पलते हैं। जो बिना बुलाए पास आ जाए, हमेशा दरवाजे पर खड़ा रहे और पूछने पर सच बोले, वही राजा का सेवक होने योग्य होता है। जो राजा की आज्ञा के बिना भी राजा के लिए कोई हानिकारक काम होते देख उसके नाश की कोशिश करता है, वही राजा का सेवक होने योग्य होता है। जो राजा के द्वारा ताड़ित होकर और कठोर बात कहकर दंडित किए जाने पर भी राजा का अनिष्ट नहीं करता यानी अशुभ नहीं करता, वही राजा का सेवक होने योग्य होता है। जो सेवक सम्मान में गर्व नहीं करता, अपमान में दुखी नहीं होता और मान अपमान के भाव को छिपाए रहता है, वही राजा का सेवक होने योग्य होता है। जो नींद, भूख और ठंड आदि से पीड़ित नहीं होता, वही राजा के सेवक योग्य होने होता है। जो भविष्य में होने वाली लड़ाई की बात को सुनकर प्रभु पर प्रसन्न होता है, वही राजा का सेवक होने योग्य होता है। जिस सेवक के नियुक्त होने पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान राजा की सीमा बढ़ती रहती है, वही राजा का सेवक होने योग्य होता है। जिसकी उपस्थिति में आग में पड़े चमड़े की तरह राज्य सीमा संकुचित हो जाए तो राज्य के इच्छुक राजा को उस सेवक को त्याग देना चाहिए। ये सियार है। ऐसा मानकर स्वामी यदि मेरा तिरस्कार अनादर करें तो ये भी अनुचित है। कहा भी है, रेशम कीड़ों से, सोना पत्थर से, कमल कीचड़ से, चंद्रमा समुद्र से, इंदीवर कमल गोबर से, आग लकड़ी से, मणि सांप के फन से उत्पन्न होता है। तात्पर्य ये है कि गुणी अपने गुणों के उत्कर्ष से प्रकाशित होते हैं, जन्म से नहीं। घर में उत्पन्न होकर भी अपकार करने वाली चूहिया मारने योग्य होती है और हितकारी बिल्ली को लोग भोजन देकर भी घर में लाने की इच्छा करते हैं। जिस प्रकार बहुत से एरंड, भिंड, मदार और नरकुल से लकड़ी का काम नहीं लिया जा सकता, इसी प्रकार मूर्ख सेवकों से राजा का कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। असमर्थ भक्त और अपकारी किंतु सामर्थ्यवान पुरुष से क्या लाभ? हे राजन, मुक्त भक्त और समर्थ की आप उपेक्षा नहीं करें। पिंगलक बोला, अच्छा यही सही, तुम समर्थ हो या असमर्थ, परंतु हमारे पुराने मंत्री पुत्र हो, इसलिए जो कहने की इच्छा हो बिना डर के कह दो। दमनक बोला, देव कुछ कहना तो है। पिंगलक बोला, अपना इरादा तो बताओ। वो बोला, बृहस्पति ने कहा है, राजा का जो बहुत छोटा भी कार्य हो वो सभा में नहीं कहना चाहिए। 6 कानों में जाने से मंत्र में भी अंतर हो जाता है और 4 कानों की बात स्थिर रहती है। इस कारण बुद्धिमानों को सब तरह से 6 कानों को बंद कर देना चाहिए, अर्थात मंत्रणा को 6 कानों में नहीं जाने देना चाहिए। पिंगलक का अभिप्राय जानने वाले बाघ, गैंडे, वृक आदि सब जीव उसकी बात सुनकर सभा से उसी समय चले गए। दमनक बोला, पानी पीने के लिए गए हुए स्वामी लौटकर यहाँ क्यों बैठ गए? पिंगलक ने शर्मिंदा होकर कुछ हंसी के साथ कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, यदि कहने के लायक ना हो तो जाने दीजिए। कहा भी है, कुछ बातें स्त्रियों से, कुछ स्वजनों से, कुछ बंधुओं से और कुछ पुत्रों से गुप्त रखनी चाहिए, परंतु उचित अनुचित का विचार करके किसी महान काम के लिए गुप्त बात भी कह देनी चाहिए। ये सुनकर पिंगलक सोचने लगा, ये योग्य व्यक्ति है, इसीलिए इससे अपनी बात कह दूं, क्योंकि दिल मिले हुए मित्र से, गुणवान सेवक से, अनुगामिनी स्त्री से और सद्भाव वाले स्वामी से अपना दुख बता देने से मनुष्य सुखी होता है। अनुगामिनी का अर्थ है पीछे चलने वाली स्त्री। दमनक, क्या तुम दूर से आने वाला ये महान शब्द, ये आवाज सुन रहे हो? वो बोला, स्वामी सुन रहा हूँ, परंतु उससे क्या? पिंगलक बोला, भद्र मेरी इस जंगल से चले जाने की इच्छा हो रही है। दमनक बोला, क्यों? पिंगलक बोला, इस जंगल में कोई अपूर्व जीव आ गया है जिसकी ये महान आवाज सुनाई दे रही है। आवाज के अनुरूप ही वो वीर भी होगा। दमनक बोला, यदि स्वामी को आवाज भर से डर हो गया है तो ये भी ठीक नहीं है। कहा है, जैसे जल के वेग से पुल टूट जाता है, इसी प्रकार अरक्षित मंत्र में भी भेद हो जाता है। चुगली से स्नेह और रूखी बात से दुखी प्राणी में भेद हो जाता है। इसीलिए स्वामी को ये पीढ़ियों से चले आ रहे जंगल को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि भेरी, वेणु, वीणा, मृदंग, ताल, पटह, काहल आदि के भेद से आवाज अनेक प्रकार की होती है। इसीलिए केवल आवाज से ही डरना नहीं चाहिए। कहा भी है, बहुत भयानक शत्रु के मिलने पर भी जिस राजा का धैर्य नष्ट नहीं होता, उसकी कभी हार नहीं होती। विधाता के डर दिलाने से भी धैर्यवान पुरुषों का धैर्य खत्म नहीं होता, क्योंकि गर्मी में तालाब सूख जाते हैं, परंतु समुद्र तब भी बढ़ता ही है। और देखो, जिसको मुसीबत में विषाद मतलब निराशा, संपत्ति में हर्ष मतलब खुशी और युद्ध में डर नहीं होता, उस त्रिभुवन के तिलक स्वरूप किसी विरले ही पुत्र को माता उत्पन्न करती है। और भी शक्ति की व्याकुलता से नम्र, निसार यानी कि सारहीन होने से बहुत छोटे और मानहीन प्राणी तथा घास की एक समान गति होती है। और भी दूसरे के प्रताप को पाकर भी जो दृढ़ता को न प्राप्त हो तो लाख के आभूषण की तरह उसके रूप से क्या लाभ? ये जानकर स्वामी को धैर्य धारण करना चाहिए। आवाज भर से डरना उचित नहीं है। कहा भी है, मैंने पहले इसे मज्जा, मज्जा मतलब शरीर के अंदर की नालीदार हड्डी के अंदर का गूदा, मैंने पहले इसे मज्जा से पूर्ण जाना था, परंतु बाद में प्रवेश होकर देखा तो इसमें चमड़ा और लकड़ी ही दिखाई पड़ी। पिंगलक बोला, ये कैसे? वो बोला, यहाँ आती है संपूर्ण पंचतंत्र की दूसरी कहानी, तियार और नगाड़ा, और चल रहा है मित्र भेद।
पंचतंत्र
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।